प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
ही तेरा निशान आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान।
प्रिय मित्र, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सब सकुशल हैं और आज के बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। पिछले कार्यक्रम में हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा के अंतर्गत बाइबल अध्ययन करें इस विषय पर हम विचार कर रहे थे, जिसे हमने पूरा नहीं किया था। तो आइए हम आज उसी विषय में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पूर्व हम सब परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए, जिसे आपने हम सबको दिया है कि हम आपके वचन को सीख सकें और आत्मिक लाभ को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनना और सीखना चाहते हैं। पिताजी, आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने वचन के द्वारा आशीषित करें और इस अध्ययन में हम सबकी सहायता करें। यदि आज कोई मानसिक दबाव व तनाव में है या अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहा है, तो प्रभु जी, आप उसके जीवन में अपनी शांति प्रदान कीजिए, ताकि वह जानने पाए कि आप उससे प्यार करते हैं और आपको उसका ख्याल है। जो बीमारी अवस्था में है, उन्हें अभी इसी समय आप चंगाई प्रदान कीजिए। आपका पवित्र लहू उन्हें शुद्ध और पवित्र करे, ताकि आपको महिमा मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ तो मित्रों, पिछले बाइबल अध्ययन में हम बाइबल अध्ययन करें विषय पर विचार कर रहे थे, और हमने देखा था कि दिनचर्या वाली भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ हमारे जीवन में ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकती, जब तक हम अलग से समय निकालकर बाइबल का अध्ययन न करें। आज भी कुछ मसीही परिवार हैं जो परमेश्वर के वचन की ज्ञान में व आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वे अलग से प्रभु के वचन को पढ़ने व उस वचन का अध्ययन करने में समय बिताते हैं। परंतु अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। आप में से कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं अपना बाइबल पाठन या अध्ययन रात्रि के समय करता हूँ। क्या यह ठीक है? आप सोने के कुछ समय पहले अपने बिस्तर पर बाइबल अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका एक पैर पहले से ही बिछोने पर है और एक आंख भी नींद के मारे बंद हो चुकी है, और आप पवित्र बाइबल को खोलते और पढ़ते हैं, लेकिन दो चार पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप सो जाते हैं। प्रिय मित्र, आप इस प्रकार की पढ़ाई करके गणित नहीं बना सकते हैं, और न ही कोई साहित्य की पुस्तक से आप कुछ सीख सकते हैं, और इस प्रकार की पढ़ाई करके आप बाइबल से कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, इसलिए इसे आपको उस समय पढ़ना चाहिए जब आपके पास समय है। इस बात को ध्यान में रखें कि आज सब लोग व्यस्त हैं और किसी के पास समय नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है। आपको अपने बाइबल अध्ययन के लिए समय निर्धारित करना जरूरी है। प्रतिदिन किसी भी समय 30 मिनट अर्थात आधा घंटा बाइबल अध्ययन के लिए अलग करें। यदि आप इस समय को दिन भर में बांट लें, तो शायद इस प्रकार समय का आपके लिए सुविधाप्रद या सुविधाजनक हो सकता है। जब भी आपको समय मिले, थोड़ा थोड़ा अवश्य बाइबल पढ़ते व अध्ययन करते रहें, और आप पाएंगे कि जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप प्रतिदिन एक या दो घंटा अवश्य ही बाइबल अध्ययन में दे सकेंगे। मित्रों, मैं बाइबल अध्ययन के विषय में किसी प्रकार का नियम नहीं बनाना चाहता, केवल यह आग्रह करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बाइबल अध्ययन व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। बच्चों को और जवान युवक युवतियों को व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करना चाहिए। दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें समूह में एक साथ बैठकर बाइबल पढ़ना व अध्ययन करना चाहिए। आपका सोचना ठीक ही है, यदि आपको परमेश्वर ऐसी अगुवाई देता है तब, अन्यथा मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस प्रकार के बाइबल अध्ययन के द्वारा 20 वर्षों में भी एक अच्छे और बुद्धिमान बाइबल अध्ययन के विद्यार्थी नहीं बन सकते। इसलिए एक अच्छे बाइबल विद्यार्थी बनने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से बाइबल का अध्ययन करें। परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली के विषय में ऐसा कहा गया है कि वह एक पुस्तक के व्यक्ति थे। एक पुस्तक का व्यक्ति उसे किसने बनाया या कैसे बना? प्रिय मित्र, वह प्रतिदिन प्रातः 4 या 5 बजे उठकर बाइबल पढ़ते थे, और इतना ही नहीं, वे 5 अलग-अलग भाषाओं में बाइबल पढ़ते थे। आप मेरा विश्वास कीजिए कि वे वास्तव में बाइबल अध्ययन करते थे। इसलिए मुझे और आपको भी चाहिए कि हम बाइबल पढ़ें, वचन का अध्ययन करें और उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करें, ताकि हम उन गुण बातों को समझ सकें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। प्रिय मित्र, बाइबल अध्ययन के पश्चात आता है बाइबल के वचन पर मनन चिंतन करना। तो हमारे बाइबल अध्ययन का अगला विषय है पवित्र बाइबल पर मनन चिंतन करना। पवित्र वचन पर मनन चिंतन करना यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को सिखाया। परमेश्वर का वचन हर समय इसराइल की संतान की आंखों के सामने रहता था, ताकि वे वचन पर चिंतन और ध्यान कर सकें। इसका प्रमाण हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6:6-9 में मिलता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:6-9 में मिलता है। आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उनको यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना, तथा अपने घर में बैठे मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। तू उनको अपने हाथ पर चिन्ह स्वरूप बांधना, तथा वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। तू उनको अपने घर के चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। अब यहाँ पर परमेश्वर की ओर से यह एक अद्भुत और आश्चर्य करने वाली बात कही गई है। परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा कि वे परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने घर के चौखटों पर लिख लें। दूसरे शब्दों में यह एक विज्ञापन बोर्ड के समान है कि जब भी वे अंदर बाहर हो तो उनकी नज़र उस पर पड़ती रहे। यदि आज आप किसी महानगर की सड़क पर निकल जाएं या गाड़ी चलाएं, तो आप शराब, सिगरेट तथा कामुकता जगाने वाले विज्ञापन के पोस्टरों को देखे बिना आगे नहीं चल सकते, क्योंकि ये पोस्टर शहर के सब तरफ चिपकाए गए हैं। ये पोस्टर कई बार यात्रियों के लिए दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं। मित्रों, अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि लोग शराब और सिगरेट क्यों पीते हैं, वह पराये शरीर के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि ये विज्ञापन हर समय उनकी आंखों के सामने रहती है। और परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को जानते हैं, वह हमारी कमजोरियों को जानते हैं, और इसीलिए उसने अपने प्रेम करने वालों से कहा कि वे परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने सदैव रखें, जिससे कि वे जिस ओर भी देखें उन्हें परमेश्वर का वचन दिखाई पड़े। और इसराइलों ने उसके वचन को घर की चौखट पर, दरवाजे पर, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वस्त्रों में भी इसे लिख लिया, और चलते समय भी परमेश्वर के वचन की चर्चा किया करते थे, और जब वे बैठते थे तो परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करते थे। जब वे बिछौने पर सोने के लिए जाते तो जब तक वे सो नहीं जाते तब तक वे परमेश्वर के वचन की चर्चा किया करते थे। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से कहा कि वे उसके जीवित वचन पर चिंतन या ध्यान करें। अब परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने का वास्तविक अर्थ क्या है? भजन संहिता 1:1-2 में एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य है। भजन संहिता 1:2, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठड्ढा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन चिंतन करता रहता है। मित्रों, चिंतन करने का मतलब है युगाली करना। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे मस्तिष्क में लाना और उस पर बार बार विचार करना। आपने गाय देखी होगी, जब वह चारा खा चुकी होती है तब वह एक स्थान पर बैठकर उन खाए हुए घासों को अच्छी तरह से मुंह में लाकर चबाती है, और इसे ही हम जुगाली करना कहते हैं। हो सकता है कि आप इस प्रकार गाय को मुंह चलाते देखकर आश्चर्य भी करते होंगे कि वह क्या चबा रही है। मित्रों, यह चबाने की प्रक्रिया वह एक या दो घंटे तक करती रहती है और देखा जाए तो वह एक प्रकार से चिंतन करती है। वह उस घास को जो उसने भोर के समय खाई थी उसे अपने पेट के एक कच्छ से निकालकर दूसरे कच्छ में स्थानांतरित कर रही है। ऐसे करने की प्रक्रिया में वह बार बार पेट के उस कच्छ में से खाए हुए घास को निकालती और मुंह में लाकर अच्छी तरह चबाती है। मित्रों, इस प्रक्रिया को करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना इस प्रक्रिया को किए वह अपने भोजन का आनंद नहीं ले सकती है। ठीक इसी प्रकार मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस स्थान पर रखना है जहां हम इसे आसानी से देख सकें, और तब वचन पर विचार करें, उस पर मनन व चिंतन करें। मुझे और आपको भी वचन की जुगाली करने की प्रक्रिया को सीखना है। हमें इसे मुंह में नहीं परंतु मस्तिष्क में करना है, तब हम इसके जीवनदायक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमें ध्यान और चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मुझे संदेश तैयार करने हैं तो मैं बाइबल के उस पद व अनुच्छेद को बार बार पढ़ता हूं, और ऐसा करते हुए लगभग आधा एक घंटा बीत जाता है, क्योंकि मैं उसे बार बार पढ़कर जानने का प्रयत्न करता हूं कि कहीं बाइबल में इसके बारे में कहीं और कुछ लिखा तो नहीं है, और अंततः बाइबल के किसी अन्य अनुच्छेद से एक नया विचार मिल ही जाता है। अर्थात एक पद या अनुच्छेद को लेकर घंटों ध्यान करना एक अनोखा अनुभव है। मित्रों, किसी ने मुझे बताया कि एक बार डॉक्टर हैरी आयरनसाइड ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से संदेश सुना, लेकिन वे उस संदेश से संतुष्ट नहीं थे। जब वे घर पर आए तो उन्होंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को दोबारा पढ़ा और घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे इस पुस्तक को समझने की समझ प्रदान करे, और ऐसा उन्होंने कई बार किया। वास्तव में उसने ऐसा हफ्तों और महीनों भर किया, और अंत में उस पुस्तक से उसे एक नई ज्योति या समझ की प्राप्ति हुई। मित्रों, कई बार बाइबल विद्यार्थियों को श्रेष्ठ गीत पढ़ाते समय डॉक्टर हैरी आयरनसाइड का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि उसकी व्याख्या संतुष्टजनक है। वैसे भी हम जानते हैं कि उन्होंने इसे एक कठिन परिश्रम के पश्चात पाया है। उन्होंने कई बार इस पुस्तक को पढ़ा और घंटों उस वचन पर ध्यान और चिंतन भी किया, तब जाकर उन्हें एक अच्छी सफलता मिली। आप जैसे कुछ श्रोताओं के पत्र हमें मिलते हैं, और एक बार हमें पत्र मिला जिसमें लिखा था कि एक घर में पत्नी हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनती है, और उसका पति भी अपने कार्यस्थल पर उसी रेडियो कार्यक्रम को सुनते हैं, और पति जब शाम को घर वापस आते हैं तो खाने की मेज पर दोनों ही उस रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित वचन पर विचार विमर्श करते हैं, उस बाइबल हिस्से पर चिंतन करते हैं। मित्रों, यही ध्यान करना या चिंतन करना है कि आप फिर से वापस जाकर उन बाइबल पदों या अनुच्छेदों पर विचार करते हैं, चिंतन व ध्यान करते हैं। आप उस पद व अनुच्छेद के लिए समय देते हैं। यदि आप कार में जा रहे हैं या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा समय है कि आप बाइबल के किसी भी पद व अनुच्छेद को पढ़ें और उस पर विचार करें। यह कार्य आपके मस्तिष्क में होता रहेगा और आपको एक सही दिशा भी देगा। यह सब कुछ ध्यान चिंतन ही है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने भाई बहन ऐसे हैं जो अपने सुबह के भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ में पढ़े गए अनुच्छेद या पद पर दोबारा दिन के अन्य समय में ध्यान या चिंतन करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग इसे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और उनके मन में भी यह बात नहीं आती जब तक कि कोई उन्हें उस पढ़े गए पद या अनुच्छेद पर उनका ध्यान केंद्रित ना करे। यदि वे रात्रि के समय पढ़ते हैं तो तुरंत सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं और जल्दी से दिया बंद करके सो जाते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने बाइबल का कुछ हिस्सा भी पढ़ा था। मित्रों, सच तो यह है कि इस वर्तमान और आधुनिक समाज में ध्यान चिंतन करना एक खोई हुई कला है। आजकल अनेक परिवारों में टेलीविजन ने ध्यान चिंतन के समय को पूर्णतः एक ओर सिमेट कर रख दिया है, और यही कारण है कि आज बहुत से मसीही परिवारों का आत्मिक स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसका एक कारण और भी है कि हमारी कलीसियाएं भी ठंडी होती जा रही हैं और परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम समाप्त हो रहा है। वचन के प्रति बिल्कुल अलग विचार हैं। आज यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कलीसिया, हम और आप वचन पर मनन चिंतन या ध्यान नहीं करते। कुछ लोग तो जानबूझकर परमेश्वर के वचन से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में बदलाव लाना नहीं चाहते। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इथोपिया का खोजा, जो उस देश की रानी कंदाके का मंत्री था तथा कोषाध्यक्ष था, वह अपने रथ में बैठकर यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए यरूशलेम से अपने देश जा रहा था। वह यशायाह की पुस्तक के एक विशेष अनुच्छेद को पढ़ रहा था क्योंकि उसे उस अनुच्छेद को समझने में कठिनाई हो रही थी। यहां वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके सामने परमेश्वर के वचन के रहस्य को खोल देता है, और इस कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा फिलिपुस को इथोपिया के खोजा के रथ के पास लाया ताकि फिलिपुस उसे यशाया की पुस्तक के उस अनुच्छेद को उसे समझाए जो यीशु मसीह के बलिदान होने के बारे में था। जब फिलिपुस उसे समझा चुका तब उसके लिए एक नया संसार खुल गया और उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि खोजा आनंद मनाते हुए अपने देश को चला गया। मित्रों, वो क्या चीज थी जो उसे आनंदित कर रही थी? और वह थी उसका मनन चिंतन। जी हाँ, वह यशाया की पुस्तक के 53 अध्याय में जाकर उसका अध्ययन कर रहा था, जिसे हम यशाया 53:1-12 पद में पाते हैं। वह इस अनुच्छेद को समझने का प्रयत्न मनन चिंतन व ध्यान के द्वारा कर रहा था। मित्रों, क्या आपने कभी उस मेमने पर ध्यान चिंतन किया है जो बलिदान व वध के लिए ले जाया जा रहा था? क्या आप जानते हैं कि वह कौन था? वह स्वर्ग से आया और अपनी पहचान हम लोगों के साथ की। हम लोग जो भेड़ों के समान भटक गए थे और हम लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध उसी पर लाद दिए। मित्रों, क्या आप कभी इन बातों पर ध्यान चिंतन करते हैं? इथोपिया के खोजे ने किया। बहुधा यह प्रश्न किया जाता है कि उसके बाद उस खोजे ने क्या किया। परंपरा बताती है कि वह अपने देश वापस गया। उसने इथोपिया मसीही कलीसिया की स्थापना की। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, लेकिन हम नहीं जानते हैं। फिर भी एक रुचिदायक बात यह है कि वह आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग में चला गया, जिससे हमें पता चलता है कि वह परमेश्वर के वचन को पढ़ता और उस पर चिंतन या ध्यान किया करता था। मित्रों, परमेश्वर ने इसराइलियों से उसके वचन पर ध्यान व चिंतन करने के लिए कहा था, यहां तक कि जब वे चलें, फिरें या बैठें, परमेश्वर के वचन की चर्चा किया करें। सोने से पहले और उठने के बाद उसके वचन पर अवश्य ध्यान करें। यह परमेश्वर की आज्ञा इसराइलियों के लिए थी। यद्यपि वे कई बार असफल रहे, फिर भी वे समय के अंतराल में परमेश्वर के वचन को दासों के द्वारा सुनते और उस पर ध्यान करते रहे हैं। लेकिन अब सवाल उनके जीवन का नहीं है, परंतु हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उस पर ध्यान करते हैं या नहीं। मित्र, आज के वचन के प्रकाश में हम अपने आप को लाएं और जांचें कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं। क्या हम वचन पढ़कर उस पर मनन चिंतन करते हैं? क्या हमारे पास मनन चिंतन के लिए समय है? प्रिय मित्र, इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं जो आप स्वयं से पूछ सकते हैं। लेकिन निर्णय तो मुझे और आपको ही लेना है कि हम किस तरह अपने बाइबल अध्ययन के जीवन को जीना चाहते हैं। मित्रों, आइए हम अधिक समय बर्बाद न करते हुए प्रभु से सामर्थ व सहायता मांगे कि वह हमारे जीवन में भी इथोपिया के खोजे के समान अद्भुत कार्य करे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप बाइबल वचन पर मनन चिंतन करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन व परिवार में अपनी आशीष प्रदान करेंगे। तो आप निर्णय के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रभु आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। आइए हम आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम इस कार्यक्रम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमें एक नई बातों को सिखाया है ताकि हम अपने जीवन में आत्मिक रीति से और अधिक बढ़ सकें, आप में बलवंत हो सकें और अपने जीवन में उन अद्भुत और नई बातों को सीख सकें जिसके द्वारा से हम अपने जीवन में आपको महिमा देने पाएं। हमारे जितने भी श्रोता भाई बहनों ने आपके जीवित वचन को सुना है, प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें ताकि वे आपके वचन को और भी अधिकाई से मनन चिंतन कर सकें और अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन कमजोर भाई बहनों के लिए जो दुर्बल हैं, प्रभु आप उनकी भी सहायता करें, उन्हें भी अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान और अपनी समझ प्रदान करें ताकि वे आप में बलवंत हो सकें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सचमुच में आप दयालु प्रभु हैं जो हमारी सहायता करते हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए और हम में से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।